Szép lassan vehet el. अठारह एक 1966 जो रिवाइज हुआ है इसी तारीख को 1967 में पहले पेज की पांचवी लाइन में बात चल रही थी। ये मनमना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा। और वर्षा है मध्यादि भव। मनमना भव मन मेरे मन में समा जा। अर्थात जो कहने वाला है कि मेरे मन में समा जा वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। पांच सौ सात सौ करोड़ की मनुष्य सृष्टि हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर रूह के अंदर जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते। पांच हजार वर्ष के ड्रामा में और उस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है इस संगम युग में जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपने 5000 वर्ष के ड्रामा की संकल्प विकल्पों की शूटिंग करती है। न जाने कितनी कितनी आत्माओं के साथ संकल्प और विकल्पों के झंझावात आते रहते हैं। उन सब की शूटिंग इस संगम युग में होती है। अच्छे संकल्प आते हैं तो अच्छा पुरुषार्थ होता है रूह का, और जब बुरे संकल्प आते हैं तो बुरा पुरुषार्थ हो जाता है। आत्मा दुखी दुखी हो जाती है। ऐसे करते करते हर मनुष्य आत्मा कलयुग से लेकर द्वापर त्रेता से होते हुए सतयुग के अंत तक श्रेष्ठ और भ्रष्ट संकल्पों की शूटिंग करती है। ये हमारी है रूहानी यात्रा। रूह माने आत्मा। और रूहानी यात्रा में जो संकल्प का बीज पड़ता है वो वाचा और कर्मणा में भी आता है। जिसका प्रतिफल होता है रूह को सुख और दुख का वर्षा मिलता है। क्योंकि मनुष्य कोई रूहानी वर्षा तो मांगते नहीं है, क्योंकि अपन को रूह समझते ही नहीं है, देह समझते हैं। तो वो जिस्मानी वर्षा मांगते हैं, जिस्म अर्थात देह की इंद्रियों का वर्षा मांगते हैं। इंद्रियों से सुख और दुख मिलता है, तो कहेंगे बाबा ने हमको ये सुख दुख दिया, भगवान ने दिया, ऐसे ही कहेंगे ना। भले है सभी आत्मा की एक्टिविटी शरीर के द्वारा, ये आत्मा है जो अब कहती है कि हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूं, लौकिक बाप है, लौकिक बच्चों को वर्षा देता है, जिस्मानी बाप कहा जाता है, जिस्मानी बच्चों को वर्षा देता है। और यहाँ संगमुख में है रूहानी बाप, वो किसको वर्षा देता है? रूहों को वर्षा देता है। बिंदु बिंदु रूह ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्माएं, निराकार कही जाने वाली आत्माएं, निराकारी बाप से रूहानी बाप से कौन सा वर्षा पाती हैं? निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा, निराकारी वर्षा होता है ज्ञान का। वो निराकारी बाप कहता है कि मेरे में जो ज्ञान है, जानकारी है, वो भूत भविष्य तीनों काल की जानकारी है। क्योंकि वो रूहानी बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। तो तीनों काल की सच्चाई का वर्षा देता है, सत्य का ज्ञान देता है। परंतु वो सत्य का ज्ञान देने वाला जो ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है, वो सच्चा बाप हर बच्चे को एक जैसा वर्षा देता है या पक्षपात करता है? परंतु क्या बच्चे एक जैसा वर्षा लेते हैं? है? क्यों नहीं लेते? देने वाला देता है तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते कि हर आत्मा रूपी पात्र में ग्रहण करने की शक्ति अपनी अपनी है। कोई छोटा पात्र है, कोई बड़ा पात्र है। ये कोई स्थूल पात्र की तो बात है नहीं, ये तो बुद्धि रूपी पात्र की बात है। हरे तो मनुष्य की मन बुद्धि रूपी आत्मा में अपने कम अथवा ज्यादा जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कोई बच्चे एक जन्म लेते हैं सृष्टि रूपी चक्र में, भूत भविष्य वर्तमान में। कोई ज्यादा जन्म लेते हैं, कोई दुखी कही जाने वाली नरक की दुनिया में ही आते हैं। जिनके लिए गीता में कहा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूर्ख मनुष्यात्माएं जन्म जन्मांतर नारकीय द्वापर कलयुगी दुनिया में द्वैतवादी दुनिया में ही आती। जहाँ दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो राज्य, दो दो धर्म, दो दो धर्म पिताएं, दो से चार, चार से आठ, आठ से बढ़ते ही चली जाती है मत मतांतर की दुनिया। तो जन्म जन्मांतर संघर्ष की दुनिया में ही आते हैं, झगड़ की झगड़ पट्टी की दुनिया में आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पात्रधारी भी हैं, ऐसी मनुष्यात्माएं भी हैं जो पहले पहले सुख की दुनिया में आती हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। वो सुख की दुनिया बनाने वाला सुखदाता सुख का सागर गाया हुआ है। जो सुख की दुनिया ही बनाता है सुख मिलता है ज्ञान के आधार पर, सच्चाई के आधार पर। जो जितना ईश्वर का ज्ञान उठाता है उतना ही जास्ती जन्म जन्मांतर सुख में रहता है। परंतु ये तो ड्रामा में नूद है कि दुनिया की हर चीज, हर प्राणी जड़ हो या जंगम हो, पदार्थ भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। जैसे कि ये दुनिया चार युगों में विभाजित है, सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। तो दुनिया की हर चीज सत्व प्रधान से तामस की ओर जाती है। सात्विकता में सुख होता है, और तामस में दुख होता है। तामसी दुनिया माने अंधेरे की दुनिया, तम माना ही अंधेरा। सत्व माना ही उजेला, जहां कभी अंधेरा होता ही नहीं। सतयुग में सभी मनुष्य आत्माएं अपनी सात्विक स्टेज अर्थात आत्मिक स्टेज में ही रहती है। वो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, जहां दुख कभी होता ही नहीं। क्योंकि रात वहां कभी होती नहीं, रात है अज्ञान। ये ज्ञान का अंधेरा आता है रावण से, और सोजरे की दुनिया सत्ययुग आता है राम से। जिस राम के लिए कहा जाता है रमितोय योगिनो यस्मिनिति राम, योगी आत्माएं जिस राम में रमण करती हैं, खुशी में खेलती हैं अतीन्द्रिय सुख में, वो अतीन्द्रिय सुख लाने वाला राम मनुष्य आत्मा है। जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, इसलिए कहा जाता है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, वो मनुष्य शक्ति को सुख का वर्षा देने वाला है, परंतु वही राम वाली आत्मा द्वैतवादी द्वापर युग आने से, जहाँ दूसरे दूसरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं आते हैं, उनके संग के रंग में आकर स्वयं भी सात्विक स्टेज से तामसी स्टेज की ओर जाती है। और जब मनुष्य शक्ति का बीज रूप बाप ही तामसी स्टेज की ओर जाएगा, तो पीछे पीछे सारी दुनिया तमो प्रधान की ओर, तमो प्रधानता की ओर चली जाती है। जब सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तामस में फंस जाते हैं, अंधकार में भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, मनुष्य मात्र से दुनिया में दुखी हो जाता है, सारी दुनिया में अज्ञान का अंधकार बढ़ जाता है। इतना अज्ञान का अंधकार बढ़ता है कि सब प्राणी मात्र दुख का अनुभव करते हैं। ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं बचती, कोई प्राणी नहीं बचता जो इस दुनिया में दुखी न होता हो। सारी दुनिया में अत्यंत अंधकार फैल जाता है अज्ञान का। जिसकी यादगार भारत में मनाई जाती है महाशिवरात्रि, बड़े से बड़े अज्ञान की रात्रि, जिससे बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि न दुनिया में कभी हुई है और न कभी भविष्य में होती है। उसी समय रूहों का बाप, रूहानी बाप इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आ जाता है। और गुप्त रूप में ही अपना कार्य करता रहता है। पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया रचने का कार्य करता है। इस मनुष्य सृष्टि में मुकर्रर रथ के रूप में वो उसी आत्मा को चुनता है जिसने जन्म जन्मांतर सत्य का आधार लेकर पार्ट बजाया है। जो सत्य रूहानी बाप से ही मिलता है, और वो रूहानी बाप जब आता है तो बोलता है मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा, अर्थात जैसे मैं त्रिकालदर्शी हूं वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार त्रिकालदर्शी बनाकर जाऊंगा। बाकी अंतर ये है कि मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं और तुम बच्चे नंबरवार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का मतलब है कि तुम शरीर के साथ जो पार्ट बजाते हो प्रैक्टिकल जीवन में, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन ही तुम्हें मास्टरी देता है। मैं तो सिर्फ आकर के सत्यमुख के द्वारा सच्चाई की रोशनी देता हूँ। परंतु सच्चाई का प्रैक्टिकल उपयोग तुम बच्चे जो भी 84 के चक्र में कम या ज्यादा जन्म लेने वाले हो, अपने अपने धारण किए हुए ज्ञान के अनुसार आवर्तन करते हो, और उसी अनुसार ज्ञानी अथवा अज्ञानी, सुखी अथवा दुखी होते हो। तो बाप बच्चों को कहते हैं, ये मनुष्य आत्मा हो, तुम जो प्रैक्टिकल जीवन में सुख और दुख का वर्षा पाते हो, वो सुख और दुख प्रैक्टिकल जीवन में देने वाला तुम्हारा बाप कौन है? मैं तो सिर्फ ज्ञान देता हूँ, क्योंकि मैं अकूत ज्ञान का भंडारी हूँ। ऐसा अकूत भंडारी जिसमें से कोई सारा ज्ञान का भंडार निकाल ले तो भी संपूर्ण का संपूर्ण ही बचता है, कभी खूटता ही नहीं। परंतु ज्ञान तो थ्योरी को कहा जाता है, तुम बच्चों की पढ़ाई है राजयोग की पढ़ाई। जिस राजयोग को सीख करके तुम राजा बनते हो, मैं तो राजा नहीं बनता हूं। और मैं तुम्हें राजा बनाता भी नहीं हूं। क्योंकि डॉक्टर पढ़ाई पढ़ाता है तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर पढ़ाई पढ़ाता है तो इंजीनियर बनता है, वकील पढ़ाई पढ़ाता है तो वकील और जज बनाता है। मैं तो सिर्फ ज्ञान का भंडारी हूँ, थ्योरी देता हूँ। प्रैक्टिकल तुम बच्चे नंबरवार करते हो, हाँ ये जरूर है, दुनिया में भी यही मान्यता है। जो मान्यता मैंने चलाई कि थ्योरी में कोई पास सब सब्जेक्ट में हो जाए लेकिन प्रैक्टिकल में फेल तो फेल माना जाता है। तुम प्रैक्टिकल में राजयोगी बनते हो, जो राजयोगी बनते हैं वो जिस राजयोगी शब्द में ही दो बातें समाई हुई है, राज भी समाया हुआ है और योग शब्द भी है। राज की बातें बच्चा बुद्धि कृष्ण समझेगा या कृष्ण को जन्मदाता जो बाप कहा जाता है वो राज की बातों को समझेगा। तो बाप तो बाप ही होता है और बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो बताओ इस मनुष्य सृष्टि में वो कौन सी आत्मा है जिसको गीता में परमात्मा कहा गया है? परमात्मा इति उदाहत, इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली तीन प्रकार की आत्माएं हैं। एक है अक्षर जो कभी क्षरित होती ही नहीं, पतित बनती ही नहीं। दूसरी वो है आत्माएं जो क्षर हैं, क्षरित होती है, पतित होती है। और पतित होती हुई आत्माओं के बीच में एक ऐसी भी आत्मा है जो संग के रंग में आकर के पतित तो बनती है क्योंकि मैं जिस देश में आता हूँ कौन है? भारत देश में आता हूँ कौन आता है? शिव बाप। निराकार आत्माओं का निराकार बाप जिस देश में आता है और जिस किसी भी मनुष्य तन में आता है उसको क्या नाम देता है? ब्रह्मा नाम देता है। तो जिस मनुष्य तन में पहले पहले आता है वो ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म गाया जाता है। अर्थात बड़े से बड़ी माता, मैं परम पुरुष हूं। कौन? शिव। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली, क्योंकि मैं आत्मा जब इस पतित सृष्टि में आता हूँ, पतित तन में आता हूँ तो भी कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी बेचैन नहीं होता। इसलिए तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच मैं परम पुरुष हूँ, परे से परे की स्टेज में रहकर पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जब इस मनुष्य सृष्टि में आता हूँ तो मुझे तो पता है ना त्रिकालदर्शी होने के कारण, इस मनुष्य सृष्टि में चौरासी के चक्र में सत्य का पाठ बजाने वाला कौन आत्मा है? कि जिस युग में मैं आता हूँ पुरुषोत्तम संगम युग में, उस युग में वाइब्रेशन के आधार पर भी सत्य पाठ बजाता है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों के आधार पर भी श्रेष्ठ पाठ बजाता है। श्रेष्ठाचारी देव कहा जाता है और द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में भी द्वैतवादी धर्म पिताओं के बीच रहकर वाचा से सत्य ज्ञान सुनाता है। इसे वेद व्यास कहा जाता है। और वेदों की रचना करने के बाद जो आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ बने, जिनमें वेदों की व्याख्या की गई, उस व्याख्या क्या आदि व्याख्याकार वही मनुष्य शक्ति का बीज है। जो पहले पहले उपनिषदों के रूप में उप माने नजदीक, निषद माने बैठना, एक एक शिष्य के सामने बैठ करके उसे सत्य ज्ञान का विस्तार बताता है। इन उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, वेदों की भी सरल व्याख्या पुराणों में की गई। कोई बड़ा पुराण, कोई छोटा पुराण, बड़े से बड़े पुराण का नाम क्या है? है महाभारत। इस महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता का भी फिर से उल्लेख किया गया। पुराणों की भी सात्विक व्याख्या पहले पहले जो करता है वही व्याख्याकार शास्त्रों में सांख्य योग का प्रणेता माना गया। कौन? कपिल मुनि। जिस कपिल मुनि के नाम पर कांपिल्य नगरी बसाई हुई है, जिस कांपिल्य नगरी से महाभारत के सूत्रधार का जन्म होता है, स्त्री और पुरुष के रूप में। महाभारत का सारा युद्ध का आधार कौन निश्चित होता है? जैसे रामायण का राम रावण युद्ध किसके आधार पर होता है? सीता के आधार पर होता है। इसलिए शिव बाप ने हम बच्चों को बोला है, तुम सब बच्चे सीताएं हो, तुम सब बच्चे द्रौपदियां हो, नंबरवार द्रौपदियां, नंबरवार सीताएं। सीता कहाँ से जन्म लेती है? धरणी से जन्म लेती है। धरणी में पांचों जड़ तत्वों का, पंचभूतों का समावेश है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पांचों ही भूत धरणी माता में समाये हुए। और वो धरणी माता जगत की माता कही जाती है। कौन सी चैतन्य धरणी माता है? जड़ भी है जो सभी धर्मखंडों की माता है, आदि माता, जिसे भारत माता कहा जाता है। बा माने ज्ञानी की रोशनी, रट माने लगा रहने वाला, ज्ञान की रोशनी में ही जो सदा लगा रहता है जन्म जन्मांतर लगा रहता है। वो कौन है? है उस आत्मा का नाम क्या है?
हरे
अभी बताया भारत। मैं किस में आता हूँ? भारत में आता हूँ। मैं परम पुरुष हूँ ना? कौन? सुप्रीम सोल शिव परम पुरुष है, भारत का आधार लेता है। भारत को माता बनाता है। तो जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, उसका नाम क्या देता हूँ काम कराने के लिए? है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा में भी प्रवेश किया तो नाम क्या दिया? ब्रह्मा। माना कोई में भी मैं प्रवेश करूंगा तो अपना काम कराने के लिए का क्या नाम देता हूँ? ब्रह्मा। इसलिए यादगार में चतुर्मुखी ब्रह्मा पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा के चार मुख दिखाते हैं, पांच मुख दिखाते हैं। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, जिसे शास्त्रों में भी परम ब्रह्म कहा गया है, वो माता हुई ना, परंतु तन पुरुष का। तो प्रैक्टिकल में माता के हैं? है? नहीं। तो जो प्रैक्टिकल में माता बनती है उसे जगजननी कहा जाता है। जैसे रामायण में कहा जगजननी जय जय उमा, जगजननी जय जय। उमा किसका नाम है? है पार्वती का। ये नाम हम सभी मनुष्य आत्माओं को दिए हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो। क्यों? कि तुम सबके बीच में जो बड़े से बड़ी पार लगाने वाली मनुष्य आत्मा है, ध्रुव पद पाने वाली मनुष्य आत्मा है, सीता के रूप में शीतल सहन शक्ति का भी पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो मूल रूप में कौन है? जिसके लिए मैं बोलता हूँ ब्रह्मा के मुख से, कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो तेरा शब्द एक आत्मा के लिए बोला जाए या अनेक आत्माओं के लिए? वो कौन है? हाँ जी, बड़े थे बड़ी माता जो स्थितियों में गाते हैं, शिव के मंदिर में जाकर गाते हैं, शिवलिंग के सामने खड़े होकर गाते हैं। पहला नाम क्या देते हैं? त्वमेव माता। पिता नहीं, पहले क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माना शिवलिंग एक है या दो है? एक है। एक होते हुए भी उसके सामने खड़े होकर तुम जन्म जन्मांतर गाते रहे, तू ही मेरी माता है, तू ही एक मेरा पिता है। अरे, माता और पिता एक कैसे हो सकता? एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत, माता फीमेल भी और पिता मेल भी, ये कैसे हो सकता? हो सकता है, ये तो हो सकता है कि वास्तव में वो माता भी ना हो जो बच्चे को जन्म दे सके, और पिता भी ना हो जो माता में बीज डाल सके। जिसे हिजड़ा कहा जाता है, वो नहीं बोला। क्या बोला? तू माता भी है और पिता भी। माता दाता पितामह, ऐसे शास्त्र में गाया हुआ है। तो अब्बल नंबर पार्वती भी है, पार लगाने वाली आत्मा। अब्बल नंबर ध्रुव पद पाने वाली द्रौपदी भी है, और सहनशीलता का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली सीता भी अब्बल नंबर है। और कौन से देश में है? भारत देश में। भारत में ही वो आता है सुप्रीम सोल शिव। इसलिए ये मात्र प्रधान देश है। कौन सा देश? भारत देश। माताओं में ये खासियत होती है, क्या क्या खासियत होती है पुरुषों के मुकाबले है? सुनी सुनाई बातों के चक्कर में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाती हैं। प्रभाव है तो माने प्रजा। दुनिया में भी कोई भी मनुष्य मात्र अपने परिवार की प्रजा रचते हैं, तो पहले पहले किसकी रचना करते हैं? माता की रचना करते हैं ना। तो माता पहली प्रजा हो गई। प्रभावित होने वाली ये परंपरा कहां से चली? संगम युग में शिव बाप से चली। शिव बाप जिस मनुष्य शक्ति के बीज रूप में प्रवेश करता है उसका आधार लेता है, वो आत्मा उस परम पुरुष से जितनी प्रभावित होती है उतनी दुनिया में किसी मनुष्य आत्मा से प्रभावित नहीं होती। जिसके लिए ये गायन चलता है सब बच्चों के लिए, नंबर वन एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसकी यादगार भारत में, महाभारत में किस व्यक्तित्व के रूप में दिखाई गई? क्योंकि शास्त्रों में जैसा नाम वैसा काम दिखाते हैं। वो कौन सा नामधारी है जिसके नाम से ही साबित होता है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई? कौन है? अरे कोई कोई याद नहीं, एकलव्य। किस एक को लव करने वाला है वो? एक कौन है जिसको लव करने वाला है? है जिसको प्यार करने वालों में उसका नाम बल गाया हुआ है। जो अव्वल नंबर में प्यार करने वाली आत्मा है मनुष्य शक्ति के बीच में, उस मनुष्य आत्मा का नाम एकलव्य रखा गया है महाभारत में। जो किसी साकार गुरु से बाण विद्या नहीं सीखता, माने उसका कोई भी इस दुनिया में साकार रूप में गुरु नहीं होता। जब गुरु नहीं होता तो टीचर भी नहीं होता, उसका कोई बाप भी साकार में नहीं होता। तो वही एक ऐसी आत्मा है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा स्थित रहती है, ऑलराउंड पार्ट बजाती है। उसके मुकाबले दूसरी मनुष्य आत्माएं अथवा कोई भी प्राणी मात्र इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला नहीं है। इसलिए गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, अर्थात इस सृष्टि पर सत्य का कभी अभाव नहीं होता। मना इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर जो सत्य है उस सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और झूठ इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर सदाकाल ठहर नहीं सकता। इसलिए भारत के शास्त्रों में एक ही व्यक्तित्व गाया हुआ है जिसका न कोई माता पिता न उसका जन्म और मृत्यु दिखाई जाती है। वो कौन है? शंकर के रूप में दिखाया जाता है। जैनियों में वो तीर्थंकर के रूप में नग्न रूप में दिखाया गया है। नग्न रूप का मतलब है कि शरीर रूपी देह रूपी वस्त्र का उसको भान नहीं है। ऐसे नहीं कि देह है नहीं, देह तो है। इस सच रूपी रंगमंच पर उसकी देह कभी नष्ट नहीं होती। देह से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, परंतु मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी स्टेज बन जाती है कि देह का भान नहीं रहता। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करने वाली आत्मा को अव्वल नंबर पुरुषार्थी आत्मा को पुरुषार्थी के रूप में पूजा जाता है। आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करने वाला, देह के अर्थ नहीं। इसलिए बोला शिव बाप ने, बोला शरीर बल कैसा भी हो परंतु आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल आत्मा होगी तो शरीर ऐसा सच्चि रूपी रंगमंच पर तामसी दुनिया होने तक शरीर सड़ते जावेंगे और पुरुषार्थ से आत्मा पावरफुल होती जावेगी। पावरफुल आत्मा सड़े हुए शरीर और शरीर के अंगों से, शरीर की इंद्रियों से सारा पुरुषार्थ संपन्न कर लेगी। सारी ईश्वरीय सेवा संपन्न कर लेगी। तो प्रधानता आत्मा की या शरीर की? आत्मा की प्रधानता देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए। आत्मा कमजोर बनती है तो शरीर भी कमजोर बन जाता है। आत्मा पावरफुल है तो शरीर भी पावरफुल बन जाता है। आत्मा माने पुरुष, और परम पुरुष कौन है? है परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा। आत्माओं के बीच में परे से परे रहने वाली स्टेज वाली आत्मा कौन सी है? परमेश्वर है। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं। कौन? नाम क्या? शिव। कल्याणकारी। तो वो परम पुरुष है। नई सृष्टि रचने के लिए नया वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए जिस माता को रचता है अपनी पहली पहली प्रजा बनाता है उस माता को अपनी सारी शक्ति तिरोहित कर देता है। दुनिया में कोई भी पुरुष मात्र होता है परिवार रचने के लिए पहली माता बनाता है तो एड़ी से लेकर चोटी की ताकत लगाकर सारी शक्ति अपनी तिरोहित करता है या नहीं करता है। ऐसे ही शिव बाप उसके पास जो भी अखूट शक्ति का भंडार जिसे कहें परम पवित्रता ज्ञान का भंडार परम पवित्र वस्तु उस माता को अर्पण कर देता है क्या पार्शलिटी करता है पक्षपात करता है, है? नहीं अरे पक्षपात नहीं करता है? सारी शक्तियां एक को माता बनाकर एक को ही क्यों अर्पण करता है? अरे तो ज्ञान धन अर्पण करने की बात है ना कि स्थूल धन की बात है? ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुनों के बीच में जो अर्जुन के रूप में नामधारी है फर्स्ट क्लास अर्जन करने वाला है चाहे ज्ञान का अर्जन करने वाला है चाहे सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है वो अपने प्रयास के आधार पर पुरुषार्थ के आधार पर पढ़ाई के आधार पर अर्जन करता है या टीचर अर्पण कर देता है। कहा जाता है टीचर ने ज्ञान दिया लेकिन टीचर ने जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई पढ़ने का प्रतिफल एक बच्चे ने 100% पाया और क्लास का एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हुआ बाकी सब फेल हो गए तो टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? कहेंगे टीचर ने पढ़ाया। क्या पार्शलिटी की है? नहीं। जो स्टूडेंट ने पढ़ाई पढ़ी वो अपने बुद्धि रूपी पात्र के अनुसार पढ़ाई पढ़ी और उसको वो बुद्धि रूपी पात्र पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है या बिना कर्मों के मिल गया? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। तो ऐसे ही है कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है जिसे 500-700 करोड़ मनुष्य शक्ति का बाप प्रजापिता कहा जाता है, जिसे शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है, वो आत्मा अपने 84 के चक्र में जो भी पार्ट बजाती है वो सच्चा पार्ट बजाती है। झूठा पार्ट नहीं बजाती। कोई भी कर्म इंद्रियों से पार्ट बजाएगी, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, सत्य कर्म करेगी या झूठा कर्म करेगी? सत्य कर्म करने वाली। इसलिए बाप का जो विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ, जो बच्चा नंबर वन आप समान बनता है, अब्बल नंबर आत्मा अर्थात हीरो पार्टधारी के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए मुसलमानों ने भी बोला है अल्लाह अब्बल दीन। अल्लाह ने अब्बल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। उस अब्बल नंबर धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन देवी देवता धर्म। कौन से धर्म की स्थापना की? सनातन सत्य धर्म की स्थापना की। उस धर्म का नाम धर्म पिता के नाम पर पड़ता है। जैसे बौद्ध धर्म बुद्ध के नाम पर, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट के नाम पर, मुस्लिम धर्म मोहम्मद के नाम पर पड़ता है, ऐसे ही सत्य सनातन धर्म मनुष्य सृष्टि रचने में जो ब्रह्मा का पहला बड़ा पुत्र गाया हुआ है, ज्ञान और योग की शक्ति के आधार पर मानसी शक्ति का पुत्र, इंद्रियों से पैदा हुआ पुत्र नहीं, न ज्ञानेन्द्रियों से पैदाइश न कर्मेंद्रियों से पैदाइश, कैसे प्राय पैदाइश होती है? मानसी सृष्टि, मनसा संकल्पों के आधार पर श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। चार बड़े पुत्र ब्रह्मा के मानसी सृष्टि में गाये हुए हैं, जो चार मुख्य धर्मों के बीज बनते हैं, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इनके धर्म पिताएं जो भी धर्म पिताओं के रूप में इस सच्ची पर आए, उन सबने धर्म के धक्के खाए हैं या नहीं खाए हैं? ये धर्म के धक्के बहुत प्रसिद्ध हैं संसार में। वो देहधारी धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो तो देह अभिमानी धर्म पिता हैं। देह के आधार पर सहन किया है, लेकिन देह की शक्ति से भी बड़ी शक्ति अविनाशी शक्ति आत्मा की है, जो आत्मा तत्व प्रधान भी बनती है और तामसी भी बनती है, तमो प्रधान भी बनती है। संग के रंग में आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप की आत्मा ऐसी तमो प्रधान बन जाती है जो पत्थर के लिंग के रूप में पूजी जाती है। उसकी सात्विक देह का यादगार है स्वर्णलिंग, भक्ति मार्ग में पूजा गया, सत्व प्रधान देह का यादगार, सत्व सामान्य देह का यादगार है रजत लिंग, चांदी का लिंग, और रजो प्रधान देह का यादगार है ताम्र लिंग, तमो प्रधान देह का यादगार है लौह अथवा पत्थर का लिंग। वो आत्मा पत्थर जैसी कठोर बन जाती है, और साधारण पत्थर नहीं, ऐसा साधारण पत्थर जिसका यादगार माउंट आबू का पहाड़ है, एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ पहाड़, दुनिया के खगोल शास्त्रियों ने माना, क्या आबू पर्वत दुनिया के सबसे जास्ती गहरे पहाड़ों में से है। इतनी गहरी जड़ जमी हुई है कि दुनिया में जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे महाविनाश के टाइम पर, महामृत्यु के समय, जिन भूकंपों में मनुष्य शक्ति सारी दब करके मरेगी, छोटी बड़ी बिल्डिंगों में, वो पहाड़ अंतिम क्षण तक भी स्थिरियम रहेगा, बाकी अंत में तो सारी दुनिया लीन हो जाती है। जड़ जंगम सभी पदार्थ गीता में गाए हुए अव्यक्त मूर्तिना शिवलिंग स्वरूप में समा जाते हैं। जो शिवलिंग साकार और निराकार के मेल का यादगार है, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में पहले पहले बनाया गया था, यहां लोग गोल आकार का लिंग रूप बड़ा पत्थर था, और निराकार आत्मा की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। हीरा छोटा रूप और लिंग बड़ा रूप, जो शिव बाप ने बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो, बड़ा रूप याद करो। समझदार को इशारा काफी है, मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होने वाली आत्मा हीरो पाटधारी हीरा भी है और देह के रूप में बड़ा पार्ट बजाने वाला शरीर भी है, परंतु वो बड़ा रूप भी जो लिंग रूप में दिखाया जाता है वो अव्यक्त मूर्ति गीता में कही गई। मूर्ति माने मूर्तमान, मूर्त साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। तो वो लिंग को अमूर्त क्यों कहा, इसलिए कहा शिवलिंग में हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां नहीं दिखाई गई है, न दिखाने का मतलब है कि पुरुषार्थी आत्मा को उन इंद्रियों की स्मृति पुरुषार्थ की ऊंची से ऊंची स्टेज में नहीं रहती। इसलिए चित्रकार ने मूर्तिकार ने वो सार्वभौम मूर्ति बनाई शिवलिंग, जिसमें इंद्रियां नहीं दिखाई गई हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वो साकार रूप को इंद्रियां होती नहीं है, इंद्रियां होती तो हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा में उनकी स्मृति नहीं रहती है। इसलिए वो स्टेज दिखाई गई है पुरुषार्थ की, कि संगम युग में जब आत्माओं का बाप शिव आते हैं तो कोई एक आत्मा ऐसी जरूर है जिसको आप समान शिव स्वरूप बना देते हैं, अपना सारा ज्ञान का वर्षा देकर बनाते हैं। जैसे दुनिया में भी परंपरा है, हिस्ट्री में देख लो, कोई भी राजा हुए उन्होंने प्रायः करके अपने बड़े बच्चे को राजाई दी है, राजाई का वर्षा दिया है। ये परंपरा कहां से चली है? शिव बाप से चली है। शिव बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अपने आत्मा रूपी बच्चों के बीच जो बड़े से बड़ा पार्टधारी बच्चा है उस बड़े बच्चे को अपना ज्ञान का भंडार का वर्षा देते हैं, या कहो वो बच्चा लेता है। पुरुषार्थ के आधार पर और क्या वर्षा लेता है? ज्ञान का, छोरी का वर्षा लेता है, बाकी कुछ नहीं। सुप्रीम सोल बाप शिव कहते हैं तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, अर्थात तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान का वर्षा लेते हो। ज्ञान का प्रतिफल प्रैक्टिकल में प्राप्त करते हो, तो क्या वर्षा हुआ? मन मना भव का है पुरुषार्थ। और मध्यादि भव का अर्थ है प्रैक्टिकल रूप में समा जाना। ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ है? याद। योग, योगी जिसे कहा जाता है वो योगी प्राप्ति का स्वरूप है, भोगी का बिल्कुल उल्टा उल्टा। भोगी इंद्रियों से भोग भोगता है और योगी अतिंद्रिय सुख भोगता है, स्वयं ही नहीं भोगता, अपने पूरे के पूरे राज परिवार को उस योग का वर्षा देता है। योगी होगा तो योग का वर्षा देगा, योगी नहीं होगा तो योग का वर्षा नहीं देगा, भोगी होगा तो भोग का वर्षा देगा। कहेगा बच्चे शादी करो, बच्ची शादी करो, इंद्रियों के भोग भोग। तो योग है प्राप्ति, योगी को वो प्राप्ति होती है। नंबर बार योगी बनते हैं राजयोग सीख करके। कौन सिखाता है राजयोग? कौन सी आत्मा है जो सिखाती है राजयोग? सोलह हजार के परिवार को सिखाती है। जिन्हें गोप गोपी कहा जाता है, गोप गोपिका थी है गुप्त पुरुषा थी, जिन्होंने बाप से गुप्त संबंध जोड़ करके संबंध माने योग, योग माने जुड़ना, कोई भी इंद्रियों से जोड़ा जाता है। देवताएं आपस में ज्ञान इंद्रियों से जुड़ते हैं, द्वापर युग से द्वैतवादी मनुष्य वृत्त इंद्रियों से आपस में जुड़ते हैं, तब सृष्टि की पैदाइश होती है। योग माने ही जोड़, लगाव, लगन, अटैचमेंट। गीता में भी लिखा है संगात संजायते कामा, बार बार संग करने से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जो कामना उत्पन्न होती है वही अविद्या है। कामना माने इच्छा, इसकी बाप कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इंद्रियों से सुख लेने की कोई भी प्रकार की इच्छा, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, नीचे गिराएगी। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो चित्र है, स्वयं भगवान बाप ने साक्षात्कार से बनवाया है, उसमें दिखाया गया कि नरसिंह नारायण नारी से लक्ष्मी उसी जन्म में पुरुषार्थ करके जो बनने वाली आत्मा है लक्ष्मी नारायण है, वो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए हैं। इंद्रियों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या, अति इंद्रिय सुखी की प्राप्ति करने वाले और उनके बच्चे जो नीचे दिखाए गए हैं राधा कृष्ण के रूप में, वो क्या कर रहे हैं है? आंखें, आंखों का श्रेष्ठाचारी सुख ले रहे हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से श्रेष्ठाचारी सुख ले रहे हैं, अनेकों के साथ नहीं एक के साथ ले रहे हैं। सतयुग की जो पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण जन्म लेते हैं, उसी जीवन में इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते भोगते वो अंत समय में शरीर छोड़ने की स्टेज में आकर 16 कला संपूर्ण से 15-16 कला संपूर्ण बनते हैं या नहीं बनते हैं, नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, क्षरित होते हैं या अक्षर रहते हैं, क्षरित हो जाते हैं। क्षरित होना माने शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उन्हें योगी कहें या भोगी कहें, भोगियों में श्रेष्ठ भोगी हैं, क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं। और एक नारी सदा ब्रह्मचारी का सुख भोगते हैं। जैसे जानवर भी विचारी होते हैं, ऐसे जानवर बुद्धि नहीं होते। देवता कहे जाते, दिव्य बुद्धि वाले कहे जाते, फिर भी भोगियों की लिस्ट है या योगियों की लिस्ट है? हैं? राधा कृष्ण सतयुग की पहली पीढ़ी भोगियों की लिस्ट है या योगियों की लिस्ट है? भोगियों की लिस्ट है। और उनको जो जन्म देने वाले लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हैं, वो आपस में लक्ष्मी नारायण को आंखों से भी नहीं देखती और नारायण लक्ष्मी को दृष्टि मात्र से भी नहीं देखता। कौन सा सुख लेते हैं? जो राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चे पैदा होते हैं, मनुष्य सृष्टि के मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के पहले पत्ते गाए जाते हैं। वो नरसे नारायण उसी जन्म में बनने वाले कौन सा श्रेष्ठ सुख भोगते हैं? आत्मिक सुख, जिसमें देह की इंद्रियों का लेश मात्र भी नहीं होता। जिसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख, परे का सुख। इंद्रियों की जरूरत ही नहीं, आत्मिक सुख, चरती कला का सुख। उतरती कला का सुख नहीं, चढ़ते जाएंगे रूहानी यात्रा करते जाएंगे कलयुग की तामसी अंतिम जन्म की जो संबंधी और संपर्क की आत्माएं हैं, उनकी सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और चढ़ते चढ़ते अंत में बाप तक पहुंच जाएंगे, जो बाप शिवलिंग का रूप दिखाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप। ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा, चढ़ती कला की यात्रा है या उतरती कला की यात्रा है? क्या तरीके चढ़ती कला की यात्रा है? कौन सी युग में होती है? जब निराकार आत्माओं का निराकार बाप इस सृष्टि पर आते हैं, एक कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि, बड़े से बड़े अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिस अज्ञान अंधकार में दुनिया वाले जो भगवान बाप को पहचान नहीं पाते, वो तो अज्ञान अंधकार में डूबे ही हुए रहते हैं भौतिकवादी बन करके, पंचभूतों के विश्लेषण में लगे रहते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश जिन पांच तत्वों से ये मनुष्य का या प्राणियों का शरीर बनता है, तो लोग पंच तत्वों के विश्लेषण में लगे रहते हैं, कुछ पांच तत्वों के बने शरीर को चलाने वाली आत्मा क्या होती है उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते। तो अज्ञानी गए हैं या ज्ञानी गए हैं, समझते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है। ये पांच तत्वों का शरीर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई आत्मा बात्मा की चीज नहीं होती। और ये वाद कहां से आता है, जिसे भौतिक वाद कहते हैं, ये आता है देहधारी धर्म पिताओं से, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। आत्मा को माने तो पुनर्जन्म माने, आत्मा को ही नहीं मानते तो पुनर्जन्म को मानने का सवाल ही नहीं। बस पांच तत्वों से बनी देह को ही सब कुछ मानते हैं। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में डूबी हुई उनकी सारी ढेर की ढेर प्रजा, जैसे एक ही क्राइस्ट धर्म पिता की 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि में से 200-250 करोड़ की प्रजा है जो क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। इतनी बड़ी दुनिया की जनरेशन, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस और उनके सहयोगी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, सारे के सारे अज्ञान अंधकार में डूबे रहते हैं। चलो उनकी बात छोड़ दो, परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य जिसे कहें, कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उन सभी धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कौन से देश की आत्माएं हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही, भारत की माताएं, संघ के रंग में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। ये भारत में खास मान्यता है कि कन्या माताओं को संघ के रंग से बचाना चाहिए। विधर्मियों के संघ के रंग में इनको नहीं आने देना है। कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं आने देना है, क्योंकि कन्याएं माता बनती हैं और माताओं में सुनी भी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्शन हो जाता है। जो सुप्रीम सोल बाप बार बार कहते हैं तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम भारतवासी बच्चे हो, मातृ प्रधान देश के बच्चे, तुम्हारी मूल माता ही परम ब्रह्म है। जो सबसे जास्ती संघ के रंग में आती है। इन देहधारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संघ में इतना संघ के रंग में आती है कि कलयुग के अंत में उसकी यादगार बनती है पत्थर का लिंग। क्या जन्म जन्मांतर के संघ के रंग पर कर्म ही ऐसे बन जाते हैं कि ऐसा पत्थर जैसा शरीर मिलता है। जो भगवान बाप इतना आकर के कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, तो भी कन्वर्ट नहीं होती। बताओ वो कौन सी बात है? जिस बात को लेकर के वो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा कन्वर्ट होती ही नहीं। जैसे शास्त्रकार कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम मानने वाले नहीं। ब्रह्मा उतर आए माने भगवान उतर आए। बताओ कौन सी बात है? है? अरे उड़ीसा वालों को तो जल्दी मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए वो कौन सी बात है। जो उड़ीसा में खास यादगार है, है? जगन्नाथ का काला मुंह किस बात की यादगार है? है? अरे काला मुंह और गोरा मुंह हाँ, क्या पूरी बात बोलो। अमृत छोड़ विष का एक ओखा है। इस बात में वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा सुप्रीम सोल बाप की इस बात को मानने में कच्ची पड़ती है या पक्की हो जाती है? है? अरे अमृत छोड़ विष काहे को खावे। इस बात में वो आत्मा अपने स्वभाव संस्कार को बदल पाती है या नहीं बदल पाती है? बदलती है? अरे बदलती है कि नहीं बदलती? यज्ञ के आज में आदमी अपन को बदला था है? जो धोबी घाट की बात को लेकर के इतना बड़ा वितंडाबाद खड़ा हो गया सिंध हैदराबाद में, कि लाश भी गुम कर दी गई फिर भी अंतिम घड़ी तक इस बात को नहीं मान सके। जो ईश्वरीय मुख्य आदेश है क्या अमृत छोड़ दिखता है को खावे। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है, यह परिवर्तन होने वाली बुद्धि है। है क्या है? पत्थर बुद्धि। दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर, द्वैतवादी युगों में संघ के रंग में आते आते सबसे जास्ती पतित बन जाती है मनुष्य सृष्टि के बीच में, कि नंबर वार पतित बनती है, है? नंबर वार पतित बनती है सबसे अब्बल नंबर है, सबसे पतितम कामी कांटा बन जाती है। जो गायन हो जाता है संगम युग कब तक, पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक, सारा संसार जान लेता है। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में एक एक मनुष्य जान लेता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझ आत्मा ने जो जीवन मुक्ति और जीवन बंध का वर्षा पाया, सुख और दुख का वर्षा पाया, वो सुख दुख का जन्मदाता पिता कौन है, हरेक मनुष्य आत्मा को पता चल जाता है। उस बाप के स्वरूप को पहचान जाती प्रत्येक मनुष्य आत्मा, और उसी बाप के सात्विक स्वरूप को याद करके फिर ऊंची से ऊंची स्टेज में चढ़ जाती है। कौन सी ऊंची स्टेज का मंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा बोलती है? ये किस आत्मा ने बोला मेरे मन में समा जा मन मना भव? है मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला, क्योंकि आत्माओं के बाप को तो मन होता ही नहीं, मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन मंथन करता है वो मनुष्य होता है, भगवान को मनुष्य नहीं कहा जाता। मनन चिंतन मंथन करता है, संकल्प विकल्प करता है, तो वो मनुष्य हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान को संकल्प विकल्प करने की दरकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है। तो जो मनुष्य शक्ति के बीच में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करता है, अब्बल नंबर का मनुष्य कहा जाता है, मनुष्यों के बीच में हीरो पार्टीधारी साबित हो जाता है, वही आत्मा कहती है अब संगम युग में कि हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूं। कौन सा वर्षा? सुख और दुख का वर्षा। सुख का वर्षा, शांति का वर्षा, दुख का वर्षा। जो सुप्रीम सोल बाप ने भी ब्रह्मा मुख से बोला बाप को याद करो, शांति धाम अपने घर को याद करो, सुखधाम को याद करो, तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन को क्यों बोला? क्योंकि वो एक ही मनुष्य शक्ति की बीज रूप आत्मा है जो सुखधाम का भी रचयिता है। प्रैक्टिकल में रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है, और साकार में स्वर की रचना करता है। लेकिन स्वर की रचना भी तब ही होती है जब सुप्रीम सोल बाप का विरुद्ध पूरा होता है। क्या विरुद्ध? कि मैं जब आता हूँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष रूप में जन्म लेता हूँ तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। दूसरा महावाक्य भी बोला, राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति दी। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। जो जन्म देने का अव्वल नंबर में कार्य करने वाला है उसका नाम शास्त्रों में दिया जनक। तुम सात सीताओं रूपी आत्माओं को जन्म देने वाला, जनक एक सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। तो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी ही हो सकता है या कोई दूसरी आत्मा हो सकती है? इसलिए बताया कि ये आत्मा है जो अब कहती है संगम युग में कि हम अपना वर्षा बच्चों को देता हूं। कौन से बच्चों को है? मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को देता हूं या आत्माओं को देता हूं? किसको देता हूं है? हम अपना वर्षा बच्चों को देता हूं। हम क्यों कहा? हम माने एक या ज्यादा है? तो बताओ, कम से कम दो हो तो कहेंगे हम। तो कौन कौन आत्माएं कहती हैं? है साकार बाप तो है ही मनुष्य सृष्टि का, और निराकार शिव बाप जो 8-9 महीने तक गुप्त पाठ बजाता है बच्चों की तरह। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। पूरी राजधानी स्थापन होने तक 10 साल और ऐड करेंगे तो 90 साल हो जाएंगे। हद की दुनिया में 9 महीने और बेहद की दुनिया में 90 साल। हद की दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो दैहिक बच्चा है या आत्मा की पहचान लेता है? पहचान लेकर आता है या देह का जन्म लेकर आता है? देह का जन्म लेकर आता है। इसलिए वो हद की बात है। देह का कन्वर्शन, देह की परिपूर्णता, दैहिक रूप में जन्म लेने का कार्य 9 महीने का है और आत्मा देह एक जन्म से कनेक्टेड है और आत्मा 84 जन्म से भी कनेक्टेड है। तो परिपूर्ण बनने में, परिपूर्ण बनकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने में लंबा टाइम लगेगा या थोड़ा टाइम लगेगा? लंबा टाइम लगता है। ये 80-90 साल का टाइम है जो बाप सुप्रीम सोल और सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप जो बोला बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है, आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल का प्रत्यक्षता रूपी जन्म और बच्चा कौन है? मनुष्य शक्ति का वो पहला बच्चा सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा जो इस मनुष्य शक्ति में पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, पहले अपनी आत्मा को पहचानता है और पहचान करके बाप से मिलन मेला बनाता है। जो इसी पिछले सीजन की अभ्यतवाणी में बता दिया याद है किसी को है? वास्तव में अव्यक्त बाप दादा का मिलन 5 दिसंबर है। क्या 18 जनवरी नहीं? क्योंकि 18 जनवरी जो देह के बाप हैं, राम बाप वाली आत्मा कहो या कृष्ण वाली आत्मा कहो, दोनों ही मनुष्य आत्माएं हैं। दैहिक जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं जो सचरूपी रंगमंच पर बाप और बच्चे के रूप में पहली पीढ़ी और बाद की पीढ़ी के मेल में जन्म लेती हैं, वो असली बाप दादा नहीं है। किनके लिए? जो अपन को आत्मा रूपी बच्चे समझते हैं। आत्मा रूपी जो बच्चे अपन को समझते हैं, उन बच्चों को समझना चाहिए कि हम आत्माओं का बाप कौन है? कौन है? सुप्रीम सोल शिव, बापों का बाप जिसका कोई बाप होता ही नहीं। और उसका बड़ा बच्चा कौन है? है मनुष्य आत्माओं के बीच में शिव बाप का बड़ा बच्चा जो अपनी आत्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप में पहले पहले स्थित होता है 5 दिसंबर को, और बाप से मिलन मेला मनाता है आत्मिक रूप में। पहली बार जिसे स्मृति दिवस कहें, बाप और बड़ा भाई आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन? राम बाप वाली आत्मा। ये दोनों आत्माओं का पहला मिलन मेला कब होता? 5 दिसंबर को। वो पास्ट की बात है, ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो जैसे कहते हैं ये संसार रूपी जंगल है, इस जंगल में एक शेर जाता है तो जंगल खाली पड़ा रहता है क्या? क्या होता है? एक शेर जाता है दूसरा शेर आता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो शेर के रूप में संसार रूपी जंगल में दहाड़ मारती है, तो उसका मुकाबला कोई भी मनुष्य मात्र, बड़े से बड़ा विद्वान पंडित आचार्य हो, उसका मुकाबला कोई ने नहीं किया। अरे शेर का मुकाबला जंगल में कोई करेगा? नहीं कर सकता है। वो आत्मा चली जाती है शरीर छोड़कर, तो दूसरा शेर इस ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाता है। ये ब्राह्मणों की दुनिया भी संसार रूपी जंगल ही होती है। जिस वर्ष है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ती है, ये ब्राह्मणों की दुनिया कोई फूलों का बगीचा नहीं बन जाती। बनती है क्या? कांटों का जंगल ही होती है, कांटे दुखदायी होते हैं, परंतु उस कांटों के जंगल में भी वो दूसरा शेर ज्ञान की दहाड़ मारता है। उस ज्ञान की दहाड़ मारने वाले शेर का मुकाबला दुनिया में कोई भी आमने सामने आकर नहीं कर सकता। दुनिया में बड़े बड़े पंडित विद्वान आचार्य हुए, धर्म पिताएं हुए, धर्म पिताओं के एक से एक बढ़कर फॉलोअर हुए, आज भी उन धर्मों में मान्यता प्राप्त हैं। कोई ने भी ब्रह्मा की तो बात छोड़ दो, कितना मजा आता है बातें करने में, करो बात कर लो उसके बाद ही बोलेंगे। कोई भी मनुष्य आत्मा इस मनुष्य रूपी रंगमंच पर नहीं हुई जिसने ब्रह्मा तो क्या ब्रह्मा कुमारियों का भी आकर के मुकाबला करके जीत पाई हो। जैसे कि सारी मनुष्य शक्ति के ऊपर ब्रह्मा कुमारियों ने जीत पाई, जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन गया कोई भी दूसरे धर्म वाला उसको कभी कन्वर्ट नहीं कर सका। ऐसे ही ये दूसरा शेर आता है और उस दूसरे शेर के जो बाल बच्चे हैं जिसे रुद्रगण कहा जाता है, ब्रह्मा कुमारियों की भाषा में शंकर पार्टी कहा जाता है, भारत की परंपरा में वो 3-6 आज भी नोटों पर छपे हुए हैं। झंडे में भी दिखाया जाता है, अशोक की लाट के रूप में दिखाए जाते हैं। उन 3 शेरों में से जो दूसरा शेर इसे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी का लाल नहीं है, स्वयं ब्रह्मा की आत्मा ही नहीं है, भले सूक्ष्म रूप धारण कर सके कर लिए हो। जो उस आत्मा का ज्ञान में मुकाबला कर सके, बबर शेर कहा जाता है, चौड़े मुंह वाला, अंग्रेजी में लायन कहते हैं, वो बबर शेर भी जो भारत का राष्ट्रीय पशु समझा जाता है, माना जाता है, टाइगर के रूप में, हिंदी में बाघ नाम से माना जाता है, उस टाइगर को सामने आमने की भिड़ंत में लहूलुहान भी कर सकता है। परंतु बुद्धि की लड़ाई में जीत नहीं सकता, गर्दन पकड़ करके सवार हो सकता है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जो लाइन होता है वो शारीरिक शक्ति में ज्यादा मजबूत होता है। परंतु दिमाग की शक्ति में कमजोर होता है, उतना चंट और चालाक नहीं होता। इसलिए बबर शेर सीधा वार करता है और टाइगर कभी सीधा वार नहीं करता, जब मौका देखेगा तब वार करेगा। ऐसे ही है, शंकर वाली आत्मा जिसके सर पर अधूरा ज्ञान चंद्रमा सवार रहता है, सवारी करता है। कब तक सवारी करता है? जब तक है जिस पर सवारी करता है वो पुरुषार्थी आत्मा पुरुषार्थ में संपन्न नहीं होती, और जब पुरुषार्थ में संपन्न बन जाती है तो उसे ज्ञान चंद्रमा को बच्चा बनाकर अपनी गोद में ले लेती है। वो आत्मा बाहर के अधीन हो जाती है, या यूं कहें जिसे शास्त्रों में या मंदिरों में बैल के रूप में दिखाया जाता है, वो बैल पर दूसरी मूर्ति दूसरे रूप में शेर के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा बैल पर सवार हो जाती है। और जब सवार हो जाती है तो बताया कि ये सवार होने वाली आत्मा है जो शरीर की एक्टिविटी के द्वारा अब संगम युग में कहती है कि हम अपना वर्षा सुख का वर्षा कृष्ण बच्चे को देता हूं। देखा होगा पहले ये चित्र नहीं छपे थे कि शिव शंकर की गोद में कृष्ण बच्चा खेल रहा हो। अभी कुछ सालों से ये चित्र भी देखने को मिल रहे कि बाप की गोद में वो कृष्ण बच्चा खेल खेलता है। कौन सा खेल है? बोला है यहां तुम बाप दादा की गोद में खेलेंगे, वहां देवताओं की गोद में खेलेंगे जन्म जन्मांतर। तो कृष्ण की आत्मा भी किसकी गोद में खेलती है ज्ञान रत्नों से? है बाप की गोद में खेलती है। खेलती है तो खुशी में आकर कहती है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने भी बैठकर कहती है, क्या दिल्ली में राजधानी बाप स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको वहां जाना पड़े, सामने बैठे बच्चे नबी माने तो भी बार बार यही बात बोलती, क्योंकि उस आत्मा को यह अनुभव हो जाता कि जो बाप है सुप्रीम सोल शिव, वो कौन से बच्चे के तन में प्रवेश करके सदगुरु का पार्ट बजाने वाला है, अथवा वो कौन सा बच्चा है जिसके तन में सुप्रीम टीचर का पार्ट बजा रहा है। इसके लिए बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में ही बोला, याद है क्या बोला? एक ही बाप भी है, एक ही टीचर भी है, और एक ही सदगुरु भी है। वो एक ही व्यक्तित्व तो है, एक ही पर्सनालिटी, जो बाप भी है टीचर भी है और सदगुरु भी है। सदगुरु माने सदगति करने वाला। सदगुरु दलाल साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। पहले स्वयं की सदगति करेगा या पहले बच्चों की सदगति करेगा? पहले स्वयं के शरीर और आत्मा की सदगति करे। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खिवैया हूं, क्या ये विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इस सागर में तुम बच्चों की शरीर रूपी नैया भंवर में पड़ी हुई है। क्या विकारों की दलदल में फंसी हुई है, लेकिन इसको पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है जो शास्त्रों में गाया हुआ है, शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, डूब सकल संसार। क्या चाप कहो नैया कहो, चाप माने धनुष, ये शरीर रूपी धनुष है, शरीर रूपी चाप है, शरीर रूपी नैया है, शरीर रूपी जहाज है। नानक ने भी बोल दिया, नानक चाप जहाज। वो तो धर्म पिताओं ने ऐसे ही अलल टप्प बोल दिया। असली बात तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप की है, जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्टीदारी है। उसका शरीर रूपी जहाज ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला गया है। क्या बोला? अरे अरे बार बार पढ़ा है मुरली में, चंद्रकांत वेदांत जहाज, किसकी कांति वाला? चंद्रमा की कांति वाला वेदांत, वेदों शास्त्रों का अंत करने वाला, जो वेद शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, 2500 साल तक उनका अंत हो जाएगा। तो ऐसे जहाज पर चढ़ करके तुम बच्चे इस विषय वैतरणी नदी या विषय सागर से, संसार सागर से पार चले जाएंगे। विषय सागर से पार जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? क्षीर सागर में पहुंचेंगे, जो विष्णु को क्षीर सागर दिखाया जाता है, वो विष्णु की पीढ़ी है, संगम युग की यादगार है या सतयुग के पहले जन्म की यादगार है? संगम युग की यादगार है। जिस विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, क्षीर खंड की दुनिया में, जो भी यह मनुष्य आत्माएं होंगी वो सब क्षीर खंड की तरह आपस में मिलकर के रहेंगी, एक की छत छाया में रहेंगी। जिस विष्णु को नो विश एट ऑल, विषय विकास से बिल्कुल परे की स्टेज हमें दिखाया जाता है। कैसी परे की स्टेज? कि सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी इंद्रियों में कोई विकार नहीं आता। निर्विकार, बड़े आराम से रहता है। नहीं तो कोई मनुष्य की रजाई में एक सांप घुस जाए तो छोड़ छाड़ के बुरी तरह भागेगा। ये तो ह्यूमन सर्प सर्पणियों की बात है। जो ह्यूमन सर्प सर्पणियां इस संसार की बड़े से बड़े सर्प सर्पणियां बनती हैं, जिन सर्पों का राजा वासुकी नाग कहा जाता है, और भी नाग नागिनियां हैं। जो उस जगत पिता के जगन्नाथ के कमर में लपेटी हुई काम विकार की निशानी दिखाई गई, गले में लपेटा हुआ वासुकी नाग दिखाया गया, मोह रूपी विकार की यादगार, बाहों में सर्पों के रूप में दिखाते हैं क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, और बड़े से बड़ा सर्प दिखाया जाता है देह अहंकार सर के ऊपर। उन पांच विकारों की जकड़ ने उसे महादेव कहे जाने वाले को जकड़ लिया होता है पुरुषार्थ ही जीवन में। और वो एक की बात नहीं है, वासुकी नाग अकेला या उसका पूरा परिवार होगा, पूरा परिवार। तो बोला ये बड़े विकारी हैं, ये सारा उसका परिवार दिखाया जाता है। जिस परिवार में सारे ही भांति एक दूसरे के विरोधी स्वभाव संस्कार वाले, छोटा बच्चा है तो हाथी के स्वभाव संस्कार वाला, बड़ा बच्चा है तो छह मुख वाला, छह धर्मों की भाषाएं बोलता है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सन्यासी मुस्लिम सिख, छह माताओं की पालना लेने वाला, और उसका वाहन कौन दिखाते हैं? मयूर दिखाते हैं। किसके ऊपर सवारी करता है? है वो तो वाहन है उसका, लेकिन मस्तक पर मोर की पूंछ किसके ऊपर दिखाते हैं? हैं? कृष्ण के ऊपर दिखाते हैं। माने कृष्ण वाली आत्मा की जो विकारों की पूछ है बहुत श्रेष्ठ डांस कर लेती है। कृष्ण का डांस प्रसिद्ध है, नटराज कहा जाता है। कौन से कृष्ण की बात है शास्त्रों में? सतयुग के कृष्ण की बात है या संगम युग के कृष्ण की बात है? संगम भी किसने की बात है, जिसमें सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है। गोद के बच्चे के रूप में खेलती है, ज्ञान डांस करती है। तो बताया ये बाप है तो आत्मा, मनुष्य आत्मा है, जो अभी संगम में कहती है कि हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूं। एक आत्मा कहती है या दो आत्माएं मिलकर कहती हैं? दो आत्माएं मिलकर कहती हैं, एक शिव और एक साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। दोनों ही कहते हैं कि हम अपना वर्षा माने निराकार बाप अपना ज्ञान का वर्षा सतयुग के कृष्ण को भी देता है और संगमयुगी कृष्ण को भी देता है। और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ज्ञान का वर्षा के साथ साथ जो प्रैक्टिकल स्वर्ग का वर्षा है किसको देता है? पहले कृष्ण बच्चे को देता है, सतयुग के कृष्ण बच्चे को। तो मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है ये आत्मा मेरा संतान है। क्या? कौन सी आत्मा? सतयुग का कृष्ण रूपी बच्चा मेरा संतान है। जो भी 500-700 करोड़ संताने हैं मनुष्य सृष्टि के बाप की, मनुष्य सृष्टि के पत्तों के रूप में, उनमें ये भिन्न संतान है। अब्बल नंबर है, अलग थलग है, जब 500 करोड़ पत्तों जैसी है तो ये किसको भी आएगा ही नहीं, इस तरह समझाना। ऐसे समझने और करने से, क्योंकि करण करावन हार गाया हुआ है ना, ऐसी एक्टिविटी करके दिखाता है, तो ऐसे समझने और करने से किसी को आएगा ही नहीं समझाना। और बच्चे कहकर समझाना और समझना वो प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ कहने की बात है? है प्रैक्टिकल बात है। राम वाली आत्मा सतयुग का जो कृष्ण बच्चा है, जो राम वाली आत्मा में ही प्रवेश होकर पार्ट बजाता है, उसे बच्चा समझती है, बच्चा बुद्धि समझती है या सालिम बुद्धि समझती है, बच्चे कहकर समझाना होता है। माना सुप्रीम टीचर के रूप में जो प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है वो किसके लिए विशेष पढ़ाई पढ़ा रहा है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा को पढ़ाई पढ़ा रहा है। जबकि आत्माओं का बाप शिव कहते हैं, ब्रह्मवाद की मुरली में कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या कहा? शिव बाप किसको पढ़ाते हैं? हैं? शिव बाप जब प्रैक्टिकल में सन्मुख आता है तो तुम बच्चों को तुम कह करके पढ़ाता है। सामने बैठे हुए बच्चों की बात है या बाजू में बैठे हुए बच्चों की बात है? सन्मुख बैठे बच्चों की बात है। तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और ये बाजू में बैठा हुआ ये बीच में सुन लेता कौन है? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा ये बीच में सुन लेता है, मैं इसको सुनाता सुनाता क्यों नहीं सुनाते भाई? कार क्योंकि सुनाऊंगा भी, सुनाता भी हूं तो ये कुछ समझता समझता ही नहीं। मैं बार बार सुनाता हूं, कहता हूं बाप का परिचय दो, परंतु ये समझता ही नहीं कि बाप कौन है मनुष्य सृष्टि का। जब ये नहीं समझता तो इसको फॉलो करने वाले दूसरे बच्चे समझेंगे? समझते हैं, समझते ही, इसलिए इसको नहीं सुनाता हूं। क्या तुम बच्चों को सुनाता हूं? अच्छा, तुम बच्चों में कौन सा बच्चा है जो सबसे जास्ती सुनता भी है, समझता भी है, समझाता भी है? मनुष्य सृष्टि का बाप, जो अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, अव्वल नंबर धर्म का स्थापन करने वाला कहा जाता है, सनत कुमार के रूप में, योगीश्वर रूप में गाया हुआ है, शंकर के रूप में, आदिदेव के रूप में गाया हुआ है, वो क्या कहता है? है? शिव बाप तो कहता है मैं तुम बच्चों को समझाता हूं, नंबर वार समझाता हूं, या नंबर वार तुम बच्चे समझते हो, लेकिन तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा समझने वाला है, सुनने वाला है, वो क्या कहता है? जो बाप का बड़ा बच्चा है, जो बड़ा बच्चा बाप का वर्षा लेने वाला होता है, वो क्या कहता है? वो किसको सुनाता है? हैं? हाँ, वो कहता है मैं तुमको ये सारा ज्ञान देता हूं। किसको? कृष्ण बच्चे को सारा ज्ञान देता हूं, तुम्हारे लिए ये सारा ज्ञान है, दूसरे इस ज्ञान को पूरा हप नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल जीवन में। तुम बच्चे जब मेरे सहयोगी बनोगे, भले सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर तो है नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल होता है। तो तुम बच्चे जब ये पूरा ज्ञान समझ लेते हो तो बाप और बच्चे दोनों मिलकर के क्या करते हैं? नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर लेते हैं। तो बच्चे कहकर समझाता हूं, समझाता कौन है और सुनाता कौन है? है? शिव बाप क्या करता है? शिव बाप सुनाता है दादा लेखराज ब्रह्मा के तन से, और शिव बाप का बड़ा बच्चा मुकर्रर रथधारी जो आत्मा है, वो खास किसको सुनाती है? उसकी आस किस बच्चे के ऊपर है? हैं? जो मनुष्य से श्रुति झाड़ का पहला पत्ता है, उसके ऊपर उसकी आस रखी हुई है। क्या बाप की आस बच्चे में रहती है ना, अंत तक आस रहती है या बीच में हार जाता है? अंत तक आस रहती है। तो बोला तुमको समझाता भी हूं, और तो कोई में ये प्रैक्टिस ही नहीं हो सकती है। क्या क्या प्रैक्टिस? नहीं, कोई भी प्रैक्टिस कोई में चल सकती है। देखो, बाबा उस दिन ये इसके ऊपर बैठ करके समझाने लगा, बाबा को खुद ही नहीं बुझता था, यानी बुद्धि में बैठता ही नहीं था, नहीं आता था कि मैं कुछ ठीक से समझाता हूं। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। वो बात समझाने की दिल ही नहीं लगती थी, तो खुद ही नहीं समझते थे तो दिल ही नहीं लगती थी। इसको प्रैक्टिस ही नहीं थी। किसको? हैं? हाँ, इसको साकार में निराकार को याद करने की प्रैक्टिस थी ही नहीं। किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को ये प्रैक्टिस ही नहीं थी। हाँ, ये प्रैक्टिस बाप को ही है। कौन से बाप को? है राम बाप को, मनुष्य सृष्टि के बाप को ये प्रैक्टिस है। क्या? कि साकार में निराकार को याद कर, पहले साकार स्वरूप को पहचानना और फिर उसको, हाँ, उसमें निराकारी स्वरूप को याद करना। तो सहज किसको ज्यादा होगा? है जो आत्मा स्वयं को पहचान लेगी कि मैं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, मैं इस मनुष्य सृष्टि का वो साकार बाप हूँ जिसकी यादगार भारत में और विदेशों में भी, खुदाइयों में भी सबसे जास्ती तादाद में लिंग रूप मिला है, वो लिंग रूप साकार मैं हूँ। उस साकार में निराकार ज्योति बिंदु को याद करना, ये सबसे जास्ती प्रैक्टिस किसको होगी? रामबा पहली आत्मा को, अपनी ही प्रकृति में शिव बाप को याद करना, समझ लेना, ये सहज हुआ या कठिन हुआ? बहुत सहज हो गया। तो ये प्रैक्टिस बाप को ही है, और जिसको ये प्रैक्टिस है वास्तव रूप में, वो बच्चों को बैठ करके समझाता है, और तुम बच्चे समझते हो क्या कि याद कैसे करना चाहिए? सहज याद क्या है? सहज याद और सहज ज्ञान किसे कहा जाए? जो गीता में वर्णित है, गायन है, सहज ज्ञान और योग, जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वही इस बात को समझा सकेगा। दुनिया के मनुष्य तो बेचारे इन बातों को जानते ही नहीं। किन बातों को? है कि भगवान को याद करने का सही तरीका क्या है, वो जानते ही नहीं। कि मैं कौन हूं, कोई से पूछे तो कहेंगे डॉक्टर हूं, टीचर हूं, इंजीनियर हूं, ये हूं, राजा हूं, रंग हूं, भिखारी हूं, देह का कर्तव्य बता देंगे, आत्मा को बेचारे जानते ही नहीं। तो दुनिया के लोग बेचारे नहीं जानते, वो बेचारे हो गए, तुम तो बेचारी नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने स्वरूप को भी जाना कि मैं आत्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप और मेरा बाप ज्योतिबिंदु। दुनिया नहीं जानती है कि दुनिया का कोई भी मनुष्य या कोई भी धर्म पिता भगवान नहीं हो सकता। जैसे शंकराचार्य और उनके फॉलोअर्स ने कहा, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, कोई नहीं जानता। ये तुम बच्चे जानते हो कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, चाहे वो प्रजापिता रूपी मनुष्य ही क्यों न हो। अगर मनन चिंतन मंथन की स्टेज में है, संकल्प विकल्प मन से करने की स्टेज में है, तो वो भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप कब कहा जाए? जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज से ऊपर उठ जाए, मनन चिंतन मंथन करने की उसको कोई दरकार न रहे, त्रिकालदर्शी प्रैक्टिकल में बन जाए, बाप समान बन जाए। जिस बाप से उसे वर्षा मिला है, उस बाप के समान त्रिकालदर्शी बन जाए, तो उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार रहेगी है? नहीं रहेगी। तो उसे मनुष्य कहेंगे या भगवान कहेंगे? क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को मन होता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला होता है। मनन चिंतन मंथन से सदा सर्वदा के लिए जीवन में जो पार हो जाए, उसको कहा जाता है भगवान। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, और वो भगवान भी सिर्फ निराकार या साकार भी है? निराकार भी और साकार भी। उसका शरीर भी अपना होना चाहिए और आत्मा भी मनन चिंतन मंथन से परे की स्टेज में होना चाहिए। वो दुनिया वाले तो बाप के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। क्या क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। अरे भगवान सर्वव्यापी है, यह भगवान की जो योग शक्ति है, योग का वाइब्रेशन है, वो 500-700 करोड़ के अंदर व्याप्त हो जाता है, या भगवान स्वयं उनमें चला जाता है? हैं? योग शक्ति व्याप्त हो जाती है। इसलिए गीता में भी कहा, न अहम तेषु ते मैं उस षष्ठ वृक्ष रूपी पत्तों में, टहनियों में, फलों में, फूलों में नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में है। माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माए, ऐसा समय भी आता है सब किस में प्रवेश कर जाती हैं, लीन हो जाती हैं, हैं? जिस बाप से जन्म लिया उसी बाप में लीन हो जाते। इसलिए शास्त्रों में गाय दिया, सन्यासियों ने बताई दिया कि आत्माएं हम सब सागर के बलबूले हैं, स्पाइसेस हैं, छोटे बड़े सागर से जन्म लेते रहते हैं, सागर में विलीन हो जाते हैं। तो ये बात सच्ची है या झूठी है? हैं? सच्ची है या झूठी है? हैं? सच्ची है। वो जड़ सागर की बात नहीं है, ये ज्ञान सागर की बात है। जो ज्ञान सागर धरणी रूपी माता जगदम्बा को अपनी गोद में लेकर बैठा है, क्योंकि तीन हिस्सा सागर है और एक हिस्सा धरणी रूपी माता है। सागर और माता एक दूसरे से अटैच हैं या डिटैच हैं? अटैच हैं। सूर्य जिसे कहा जाता है वो धरणी से सागर से अटैच होता है या डिटैच रहता है सदैव? वो है जड़ सूर्य। और शिव है ज्ञान सूर्य। वो ज्ञान सूर्य जब इस धरणी पर आता है तो अपना टाइटल अपने बड़े बच्चे को देता है। इसलिए बोला गीता में कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले ये ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। संसार में जो सूर्य के समान प्रत्यक्ष होता है, सूर्यवंशी के रूप में प्रत्यक्ष होता है, सूर्यवंशियों में शिरोमणि माना जाता है, उस सूर्य को ये ज्ञान देता हूँ। और कोई बच्चे तो इस ज्ञान को पहले ले ही नहीं पाते। तो जो बच्चा संसार में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है साकार में, वो बच्चे की योग शक्ति, वाइब्रेशन की शक्ति दुनिया के कण कण में व्याप्त हो जाती है, प्राणी मात्र में व्याप्त हो जाती है। वो आत्मा तो नहीं उनमें जाती है? अरे मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा, राम बाप की आत्मा प्राणी मात्र में चली जाती है या प्राणी मात्र की आत्मा बाप में प्रवेश कर जाती है? हैं? ना अहम तेषु ते मैं, मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वो सब मेरे में है। सारी मनुष्य शक्ति जड़ हो या जंगम हो, सब मेरे में लीन हो जाती है। मेरे से ही सारी दुनिया प्रत्यक्ष होती है और मेरे में ही समा जाती है। तो देखो, दुनिया वाले जब सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि ये कोई शिक्षक है या गुरु भी है। अरे शिक्षक और गुरु अलग होता है। यह सारे शिक्षा लेने वाले शिष्य शिक्षक होते हैं। शिक्षक अलग है और शिक्षा लेने वाले अलग। तो जब सर्वव्यापी कह दें कि सभी शिष्यों में शिक्षक सर्वव्यापी है तो सही बात है, उसकी शिक्षा सर्वव्यापी है या शिक्षक सर्वव्यापी है? शिक्षा सर्वव्यापी है। नंबर वन,
तो देखो, शिक्षक हो या गुरु हो या बाप हो, वो सर्वव्यापी है, ये सवाल ही नहीं उठ सकता है। तो इसी को कहा जाता है, कितने जंगल में जाकर पड़ा है, ये दुनिया वालों की बुद्धि कैसी जंगल में मुझी हुई पड़ी है। तो बाप आकर कल्प कल्प करके समझाते हैं, कौन समझाते हैं, बाप, बाप सुनाते हैं या समझाते हैं, है? कौन सा बाप सुनाते हैं और कौन सा बाप समझाते हैं? शिव बाप सुनाते हैं, तुम बच्चों को सुनाते हैं, ये बीच में सुन लेता है, और तुम बच्चों में जो बच्चा सुनने के साथ साथ समझता भी है और दूसरों को समझाता भी है, जिन बच्चों को समझाता है उनमें से सबसे जास्ती ध्यान किस बच्चे के ऊपर देता है? मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है, कृष्ण दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, उसके ऊपर जास्ती कंसंट्रेशन देता है। ये सारी पढ़ाई किसके लिए है, है? मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है उसके लिए सारी पढ़ाई है। देखो, अभी तो तुम बच्चे समझ गए क्या कि सुनाने वाला बाप भी सर्वव्यापी नहीं है, वो भी मुकर्रर रूप से एक तन में आता है या सर्वव्यापी होकर आता है? एक तन में आता है, और जिस तन में आता है वो भी समझाने के लिए सभी में सर्वव्यापी नहीं है। मनुष्य तो बेचारे कितने मुझे हुए, और तुम भी कितने मुझे हुए थे, हा? मुझे हुए थे या मुझान निकल गई थी, हैं? कितने मुझे हुए थे, तुमको क्या पता था, है? पता था कि आत्मा परमात्मा सब आत्माएं नहीं हो सकती, तुमको पता था, है? क्या समझते थे कि सभी आत्माएं, सभी आत्माएं जो परमात्मा, सूअर की आत्मा हो वो भी परमात्मा, कछुए की आत्मा कच्छावतार हो वो भी परमात्मा, मछली की आत्मा मत्स्यावतार हो वो भी परमात्मा। अरे, भक्ति मार्ग में भगवान को परमात्मा के अवतार में क्या क्या दिखाई दिया? अरे, भगवान जानवरों को समझाने के लिए आएगा या मनुष्यों को समझाएगा? तो जानवरों का अवतार लेकर आएगा क्या, है? नहीं। तो भक्ति मार्ग में ये जानवरों के अवतार क्यों दिखाए, है? क्योंकि जो आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, तो जानवर बुद्धि, ऐसी जानवर बुद्धि कि बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाती, क्या बाप को मान लेती है ये बाप है, एक बार पहचान लेती है फिर भूल जाती, नहीं पहचान पाती। जिनको मत्स्यावतार के रूप में दिखाया, वो मछली का अवतार किसकी यादगार है? जो छोटे रूप में, बहुत साधारण छोटे रूप में पहले होती है और बाद में इतना बड़ा रूप धारण करती है कि न गगरी में समाती, न सरोवर में समाती, न झील में समाती, न बड़ी से बड़ी नदी में समाती, इतना बड़ा रूप धारण कर लेती। क्या मछली का क्या न्याय प्रसिद्ध है जिसे मत्स्य न्याय कहते हैं? मछली का न्याय है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाए, अपने कंट्रोल में कर ले। तो देखो, सागर में सबसे जास्ती तादाद में कौन से प्राणी रहते हैं? है? है? मछलियां सबसे जास्ती तादाद में रहती, वो सागर तो जड़ है, वो मछलियां भी एनिमल। या तो ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बच्चों की बात है, जो अज्ञान काल में ह्यूमन मछली के रूप में होती हो, क्या ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सागर के अंदर रहती हो, ज्ञान सागर के अंदर पलती हो, ज्ञान सागर के अंदर खाती हो, पीती हो, रहती हो, एक प्रकार की मछलियां होती हैं या भांति भांति की होती हैं? हैं? भांति भांति की मछलियां होती हैं। कोई तो देखने में बड़ी सुंदर होती है, कोई में तो बहुत बदबू निकलती है, विचार की बदबू। तो देखो, उन सब मछलियों की रानी कौन हुई? बड़ी मछली कौन हुई? मगरमच्छ जिसे कहा जाता है, जगदम्बा। और उस मगरमच्छ के ऊपर कौन सवारी करती है? है? गंगा। जो गंगा ज्ञान सागर से पहले पहले जन्म लेती है, वो गंगा सवारी करती है, कंट्रोल में लेती है, किसको? है? मगरमच्छ। इसलिए बताया कि मगरमच्छों का देश कौन सा है जहाँ बहुत ही मगरमच्छ मिलते हैं? गंगा नदी में। तो देखो कैसे कैसे अवतार दिखाई दिए हैं, कोई मगरमच्छ का अवतार, कोई सुअर का अवतार,
कोई और कौन कौन से जानवर?
कच्छपा बता,
उसने कच्छप के ऊपर सागर मंथन किया। बारह अवतार। तुमको क्या पता था ये सारे भगवान के रूप होते हैं क्या? सभी परमात्मा होते हैं क्या? सभी मनुष्य से मनुष्य आत्माओं के बीच में परम पाठधारी परमात्मा होते हैं क्या? नहीं। अभी मनुष्य की कतार में तुम आ गए, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों की कतार में तुम बच्चे आ गए। पहले पहले कौन सी कतार में थे? हैं? जानवरों की कतार। जैसे दिखाते हैं कृष्ण गौओं को चराते थे, तो दुनिया वाले जानवर गौओं की खास करके भारत में कितनी मान्यता देते हैं, ये नहीं समझते कि ये तो भारत की कन्याएं माताएं हैं जिनको उनके माँ बाप जीवन में जिस खूंटे से बांध देते हैं सारा जीवन उसी खूंटे से बंध कर रहते हैं। कभी भी डाइवोर्स देकर भागती नहीं, वो विदेशी कन्याएं होती हैं, विदेशी माताएं होती हैं, और भारत की कन्याएं माताएं गौओं के समान होती हैं या बकरियों के समान होती हैं? गौओं के समान। तो उन गौओं को गौओं के रूप में नहीं देखते, जो भगवान ने आकर के ह्यूमन गौओं की पालना की थी। गौएं है तो ह्यूमन नहीं है, मनुष्य रूप में तो है, लेकिन फिर गौएं क्यों कहा? गौएं क्यों कह दिया? अरे गोप गोपी कह देते वो ही बात ठीक थी ना, शास्त्रों ने गोप गोपी भी तो कहा है। क्यों कहा गौएं? अरे बिना कारण के गौएं कहा? हाँ, कुछ न कुछ बुद्धि जानवरों की तरह होती है। जानवर बुद्धि होने के कारण उनको गऊ कह दिया है। जो जानवर बुद्धि है वो अपने बाप को बाप के रूप में, भाई को भाई के रूप में, बहन को बहन के रूप में, बेटी को बेटी के रूप में जानेगी मानेगी या नहीं जानेगी मानेगी? हाँ? जानेगी नहीं जानेगी? ये प्रैक्टिकल एक्ट की बात है, इसलिए बोल दिया गौएं। परंतु तुम तो मनुष्यों की कतार में आ गए, तुम किसको कहा? तुम एक को कहा जाता है या कम से कम दो को कहा जाता है? तू एक को कहा जाता है और तुम कम से कम दो को कहा जाता है।
तो
तुम पहले कितने मुझे हुए थे? तुमको क्या पता था? अभी मनुष्य की कतार में आ गए तो कौन है दो? जो गौओं की कतार में नहीं रहे, बैल की कतार में नहीं रहे।
अरे गऊ होगी तो बैल भी होगा कोई कि नहीं
है? नहीं, गऊ के साथ बैल भी होता है। तो तुम मनुष्यों की कतार में आ गए, अब तुम जानवरों की कतार में नहीं रहे। कौन है? कौन किसको बोला? कम से कम दो कौन? राम और कृष्ण। सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन गया। अरे भूत प्रेत बना कि नहीं? वो मनुष्य होता है भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। जिन्नात भी कहते हैं, जिन्न जित ना, दो शब्दों को मिलाएं तो हो जाता है जिन्न, जो जीता नहीं जा सकता। कौन है? बड़ी मम्मी जगदम्बा वो जीती नहीं जा सकती। अच्छा जगत पिता उसे जीत नहीं सकता है? तो कैसे जिन्नात कह दिया?
नहीं,
जिन्न को काम क्या दिया बाबा ने? चढ़ो और उतरो। याद में ऊपर चढ़ो, क्या योग में ऊपर चढ़ो और फिर भोग में नीचे गिरो, नीचे उतरो। ये काम मिला किसको? जिन्न को। बोला भी तुम जिन्न हो, तुम क्यों कहा? तू क्यों नहीं कहा? हाँ, दो आत्माएं हैं जिन्न का पार्ट बजाने वाली, एक प्रवेश करने वाली और एक शरीरधारी। कौन दो आत्माएं? राम वाली आत्मा और हाँ दादा लेख राज कृष्ण वाली आत्मा। ये दो आत्माएं हैं जिन्न, जिनको ये काम मिला हुआ है। क्या? बाप से चढ़ो और उतरो, नहीं तो जिन्न क्या कहता था है? हाँ, मुझे काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो अभी तुम बच्चे मनुष्य की कतार में आ गए, मननात मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है वो मनुष्य है। तो तुम मनन चिंतन करते हो तो मनुष्य की कतार में आ गए। आगे तो जंगलियों की कतार में थे। क्या आगे क्या थे? आगे जंगलियों की कतार में थे। जंगली माने? अरे शेर भी हो चाहे जंगल का तो है जंगली, या जंगली नहीं है? है वो भी जंगली। टाइगर भी हो तो भी जंगली है या नहीं? जंगली। यानी जंगल वाले भी तो बाप को नहीं जानते हैं ना। क्या जो जंगल के जानवर होते हैं वो बाप को जानते हैं, हैं? अम्मा को जानते हैं, हैं? अम्मा के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए इंद्रियों से, बहन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, बेटी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, ये जानकारी जानवरों को होती है नहीं होती? बाप को भी नहीं जानते जानवर। जानवर कोई जानते हैं क्या बाप को? तो उनमें और तुम्हारे में फर्क क्या रहा? क्योंकि पुकारते तो सभी तुम ही हो बाप को, क्या तुम ही तो बाप को पुकारते हो, जानवर थोड़े ही पुकारते हैं, है? पुकारते हो कि नहीं? हे पतित पावन आओ, बुलाते हो या नहीं बुलाते हो? सुप्रीम सोल बाप ने भी ब्रह्म वाक्य में मुरली में बोला क्या है? जो पतित पावन कह करके बाप को बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं, जो बुलाते नहीं वो पूरे पतित से पावन बनते नहीं। तो देखो अपने अपने दिल से पूछो कि कौन से बच्चे बाप को पहचान कर बार बार दिल से बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं कि बाबा आओ, अंदर अंदर में दिल बुलाता है या नहीं बुलाता है? बार बार बुलाता है तो समझ लो हम पतित से पावन इसी जन्म में बनने वाले, और नहीं बुलाता है तो समझो हम पतित से पावन बनने वाले नहीं। अनिश्चय बुद्धि जो बच्चे हो गए, पहले निश्चय बुद्धि थे अब अनिश्चय बुद्धि हो गए, वो बाप को बुलाते हैं, इससे क्या साबित होता है? वो पतित से पावन नहीं बनते, वो तो बेचारे जानते ही नहीं है इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का बाप कौन है। जानवर हैं क्या? जो जो अनिश्चय बुद्धि हो गए, विष्णु राम की पार्टियों में चले गए, वो जानते हैं बताएंगे? कहते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, वो ऐसे करता है वैसे करता है, ग्लानी करेंगे बाप की, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बाप कौन है। संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है, तो पुरुषों में उत्तम को बताना चाहिए ना, वो बता ही नहीं सकते, बाप को नहीं जानते हैं तो जानवर हुए ना। तुम मनुष्य होकर के भी जिसको पुकारो, जिसके देवताओं के पास जाओ, जो कुछ करो, वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। तभी तो कहते हैं ना कि तुम तो जैसे जंगली बन पड़े जो बाप को भी नहीं जानते, इसलिए अंग्रेजी में नाम रखा है क्या? इस दुनिया का नाम रखा है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, क्या? कांटों का जंगल, कांटों का संप्रदाय है। अभी तुम बच्चियां बनी हो फूलों का संप्रदाय, बनती जाती हो, बन रही हो। क्योंकि फूल कोई निकलते हैं
तो फट से फूल बनकर थोड़े ही निकलते हैं, निकलते हैं क्या बनते हैं, पहले पहले कली होते हैं, फिर बाद में फूल बनते हैं। नहीं, कोई निकलते ही फूल नहीं बन जाते, बहुत छोटी सी कलियां निकलती हैं और आहिस्ते आहिस्ते करके निकलती हैं। तो तुम भी कांटों से फूल बनते हो आहिस्ते आहिस्ते, एकदम नहीं बन जाते हो। नाम तो है ना तुम्हारा बरोबर, जब ऐसा काम तुम्हारे द्वारा ही होते हैं तो नाम पड़ता है। ये फॉरेस्ट ऑफ थॉम्स है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये कांटे हैं और वो देवताई फूल हैं जो देने की बात करते हैं, किसी से मांगने लेने की बात नहीं करते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई देखे हैं जो लेने की बात करते हैं, मांगते ही रहते हैं, देखे या नहीं देखे हैं? देखे, गाया तो जाता है ना, देवता देने वाला दैत्य। अभी तुमको अच्छी तरह से समझ पड़ गई है, तुम सुजाग बने हो, साधारण रूप से नहीं जगे, सु माने सुंदर तरीके से जाग गए हो, तुमको नॉलेज मिली ना, तो तुम सुराग हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको सारा ये, जैसे कहा जाता है कि ये नाटक की आदि मध्यंत, यानी जो छोटा एक्टर होगा वो भी जानेगा, ये 5000 वर्ष का जो भी ब्रॉड ड्रामा है इसका आदि भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है। वो छोटे छोटे नाटक होते हैं और ये ब्रॉड ड्रामा है, परंतु सभी एक्टर्स को जानते तो होंगे ना, है? जो ड्रामा में रंगमंच पर एक्ट करने वाले एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के पार्ट को जानते तो हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। उनके पार्ट को भी सभी जानते होंगे, परंतु ये तो है ह्यूज ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा है, इसलिए इनको थोड़े ही जानना होता है, और जानना भी होता है तो थोड़े में जानना होता है, पूरा जानने की जरूरत नहीं है। कितना थोड़े में है? उतना ही थोड़े में जानना होता है जितना तुम आत्मा रूपी एक्टर्स 84 के चक्र में आकर 84 जन्मों में 84 प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र धारण करके जितनी जितनी आत्माओं के संबंध में आते हो, जितनी जितनी आत्माओं के संपर्क में आते हो जन्म जन्मांतर, उन्हीं आत्माओं को जानते हो कि 500 करोड़ को जानते हो, हैं? तुम्हारा कनेक्शन 84 जन्मों में जितनी जितनी आत्माओं से रहा होगा उन्हीं को तुम संगम युग में जानेंगे या 500-700 करोड़ को जानेंगे? कितनों को जानेंगे? हाँ, तुम थोड़े को जानते हो, ह्यूज 500-700 करोड़ एक्टर्स को तुम
नहीं जानते।
अरे
फिर कोई जानता होगा या नहीं जानता होगा, वो कौन? वो है हीरो पार्टधारी, वो है हीरो पार्टधारी और मुख्य एक्टर। मुख्य एक्टर या सामान्य एक्टर? मुख्य एक्टर। और पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर भी है या सिर्फ हीरो पार्टधारी ही है? है? हाँ, दुनिया के लिए डायरेक्टर के रूप में भी पार्ट बजाता है, पर्दे के अंदर पर्दे के पीछे रहकर। दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम बच्चे उस डायरेक्टर को जानते। इसीलिए 23 जुलाई की अव्यक्तवाणी में जिसे संदेश कहा, लास्ट संदेश, उसमें बताया ये जो तीसरा रथ है, क्लियर भी कर दिया, पहला रथ ब्रह्मा का, दूसरा रथ गुलजार दादी का, अब ये जो तीसरा रथ है इसकी आवाज दुनिया में जानी चाहिए। क्या आवाज दुनिया में जानी चाहिए? जहां तक आवाज पहुंचा सको वहां तक पहुंचाओ। क्या लंदन में जनक दादी तक भी भले पहुंचा दो लेकिन ये रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों के सिवाय और किसी के सामने, दुनिया वालों के सामने ये रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है? इसके अंदर क्या राज है? कोई राज है या नहीं है? क्या राज है? है? इसके अंदर राज ये है कि जो भी धर्म पिताएं हुए उन धर्म पिताओं ने जो दुनिया में आकर धर्म के धक्के खाए, जैसे क्राइस्ट इस दुनिया में बड़े से बड़े जनरेशन का बाप माना जाता है, तो आखिरी उसका क्या हाल हुआ है? हाँ, कीलों में ठुकवाई दिया गया। वो भी पवित्रता की बात थी, जिस पवित्रता की बात को दुनिया वालों ने नहीं समझा। उस समय के धर्मगुरुओं ने नहीं समझा। धर्म का आडंबर करने वालों ने नहीं समझा कि वो तो परमधाम से आई हुई नई आत्मा थी, सत्व प्रधान आत्मा थी या तमो प्रधान आत्मा थी? शेष इंद्रियों का सुख भोगने वाली जीवन मुक्त आत्मा थी या भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने वाली भ्रष्ट आत्मा थी? है? हाँ, जो धर्म पिताओं की आंखें ही बताती हैं कि जिस जन्म में वो पहले पहले आते हैं तो सात्विक आत्मा होने के कारण उनके चेहरे दृष्टि को देखने से ही पता लगता है कि वो सत्व प्रधान पार्ट बजाने वाली आत्मा है भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं हो सकती। इस राज को उस समय के गुरुओं ने नहीं पहचाना और उनके गुरुओं के फॉलोअर्स ने उन्हें फांसी पर चढ़ाई दिया। ऐसे ही मोहम्मद को इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, सभी धर्म पिताओं को, जैसे महात्मा बुद्ध को न समझने के कारण भारत देश से देश निकाला दे दिया गया। समझ करके देश निकाला दिया या बेसमझी से दे दिया? बेसमझी से दे दिया। तो वो तो लिमिटेड जनरेशन के पिताएं हैं, है? सारी मनुष्य सृष्टि के पिता हैं? नहीं। और यहाँ तो सारी मनुष्य सृष्टि के पिता की बात है। जिस मनुष्य सृष्टि के पिता से 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, प्रैक्टिकल जीवन में इसी दुनिया में मिलता है। जब भी वो आत्माएं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पहले पहले आएंगी तो कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति ही भोगेंगी, जीवन बंध में नहीं आ सकती। ये जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त कराने का तरीका किसने सिखाया और कौन सी प्रक्रिया से सिखाया? राजयोग की प्रक्रिया है। साकार में निराकार को याद करने की प्रक्रिया है। हम बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें ब्रह्म वाक्य में मुरली में शिव बाप ने बताया कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझकर याद करो, अमृत वेले याद करो। तो हम बच्चे प्रैक्टिकल में अच्छी तरह जानते हैं कि 3-4 घंटे के अमृत वेले में हम कितनी देर निराकार की याद में टिकते हैं, कितनी देर टिकते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा टिकते हो वो हाथ उठाओ। है? एक घंटा निराकारी स्टेज कोई संकल्प नहीं है? वो कहते 2 मिनट भी नहीं, आप कहते 1 घंटा। हाँ, तो माना प्रैक्टिकल में सबकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया कि निराकार को याद करना सामान्य मनुष्य आत्माओं के बस की बात नहीं। ये बहुत कठिन काम है। इस कठिन कार्य को करने वाली आत्माएं जो निराकार को याद करती हैं और निराकार की याद में रह करके एक अलग ही धर्म स्थापन कर लेती है। कोई है जो ब्रॉड ड्रामा में अलग धर्म स्थापन करके बड़ी बड़ी से बड़ी जनरेशन के बाप बनकर बैठ जाते हैं।
परंतु उनकी भी बुद्धि को मोल्ड करने वाले कोई तुम ब्राह्मणों की दुनिया में है, जो उनके भी बीज रूप बाप और उन धर्म पिताओं के भी आधार मूर्त माताएं हैं, जो इन धर्म पिताओं को भी असलियत का परिचय देंगी। परंतु लास्ट में और लास्ट में वो असलियत को जानेंगी तो वो धर्म पिताएं भी उस साकार को पहचान करके साकार में निराकार को याद करेंगी और कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगी। तो बताया इन बातों को समझने के लिए तुम बच्चे अच्छी तरह से सुजाग बने हो, खास करके योग की बात को समझने में कि सहज योग कैसे होता है और कठिन योग कैसे हो जाता है। सहज कैसे? सिर्फ साकार में निराकार को याद करने से नहीं कि दादा लेखराज ब्रह्मा साकार और उसमें निराकार ज्योति बिंदु चेहरे उस चेहरे में निराकार ज्योति बिंदु को याद करने लग पड़े। साकार आसाराम बापू और उसमें ज्योति बिंदु शिव को याद करने लग पड़े। तो बाप से कनेक्शन जुड़ेगा है? नहीं जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा है? बाप को अच्छी तरह से पहचान कर। कैसी अच्छी तरह से पहचान कर? इतनी अच्छी तरह से पहचान लें कि एक बाप के सिवाय और कोई की भी बात को न सुने। एक से ही ज्ञान सुने, दूसरा कोई बाप की बात के अलावा दूसरी बात सुनाए तो बिल्कुल न सुने। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल। जो सुप्रीम सोल बाप ने ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला एक बाप से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। जिनका विविचारी ज्ञान हो जाएगा रज रज के प्यार से सुनेंगे। हाँ, ये बात तो हमारी बुद्धि में भी आई, हमको भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें, तो कान में धारण कर ली ना, अच्छा लगा ना। तो ज्ञान विविचारी हो गया। जिनका ज्ञान संगम युग में विविचारी हो गया वो विविचारी धर्मों में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो बेसिक नॉलेज में भी कन्वर्ट होते रहे और एडवांस ज्ञान में भी एडवांस में आकर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखने के बावजूद भी बाप को बाप मानने से इनकार कर देते हैं, बाप को भूल जाते हैं, औरों की बातें सुनने लग पड़ते हैं। तो ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि चाहिए जो शास्त्र में भी गायन है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप गौ घात समाना। सदगुरु की निंदा अगर कान से भी सुनकर अंदर धारण कर ली कि हाँ ये सच्ची बात है, धारण कर ली ना, दिल से धारण कर ली, तो कौन सा पाप बन जाता है? गऊ घात। वो जानवर गऊ की घात करने की बात नहीं है, जो ह्यूमन गऊएं बाप के प्रति सरेंडर होती हैं, उन गऊओं की बात है जिन गऊओं को मुसलमान काटते हैं। क्या मुसलमान? मुसलमानों का कौन सा धर्म है? स्वधर्म, आत्मा का धर्म है या देह की इंद्रिय का धर्म है? मुसलमानों का देह की काम इंद्रिय का धर्म है, वो से इंद्रिय से उन कन्याओं रूपी गऊओं को, माताओं को काट के रख देते हैं। वो बुद्धि में संग का रंग, दैहिक सुख लेने की जो आदत पड़ जाती है कि जैसे किसी ने एक बार रसगुल्ला खा लिया तो बार बार उसे याद आता है, ऐसी हालत कर देती है। मैंने गऊ को काट दिया, वो दोबारा बाप का बच्चा नहीं बन सकती। यहां भी देखा होगा खास उड़ीसा में ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो सरेंडर हुई थी कंपिल में, सरेंडर होने के बाद उन मुसलमानों ने क्या किया है? उनको बहला फुसला करके उनके साथ शादी शादी कर ली, काट दिया, दुखी भी हो रहे हैं, चाहते हैं कि हम फिर से उसी संगठन में जुड़ जाएं, आते भी हैं, भक्ति करेंगे, माफीनामा लिखेंगे, परंतु जब कहा जाता है कि माफीनामा तो तभी कहा जाएगा जब परनाला वहां बहना बंद हो जाए, क्या तो भाग जाते हैं। नहीं, हम छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को, अब हम सरेंडर होके नहीं रह सकते। तो बताओ सरेंडर कितनों को होना है? 16,108 हैं गऊएं जिनको समर्पण हो करके रहना है। समर्पण का अर्थ ही मुरली में बता दिया, तन अर्पण करना है तो पूरा ही तन अर्पण करना पड़े, तब कहेंगे समर्पण। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने अर्पण, ऐसे नहीं नाक अर्पण कर दी तो कान अर्पण नहीं किया, हाथ अर्पण कर दिया तो टांग अर्पण नहीं किया, उसको फिर समर्पण कहेंगे? सम माने संपूर्ण, अर्पण माने अर्पण नहीं कहेंगे। जब ऐसी बात आती है कि बाप के साथ दगाबाजी नहीं चलेगी, क्या एक बाप दूसरा न कोई, तो भाग जाते हैं। ओम शांति।